अध्याय 6 महासागरी परिवहन पोताश्रय पत्तन एवं व्यापार मेजर पोर्ट्स एंड हार्बर्स। किसी देश के व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रगति के लिए परिवहन माल अथवा मनुष्यों का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है। एक देश में पाई जाने वाली वस्तुओं का दूसरे देश में पाई जाने वाली वस्तुओं से विनिमय अथवा औद्योगिक विकास हेतु कच्चे माल की आवश्यकता या तैयार माल की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता हेतु परिवहन के साधनों का विकसित होना नितांत आवश्यक है। आधुनिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के फलस्वरूप परिवहन के साधन उन्नत से उन्नतर होते चले जा रहे हैं। 19वीं सदी में महासागरीय परिवहन को प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा तीव्रगामी बनाने के अनेक सफल प्रयास हुए हैं। स्वेज नहर के निर्माण से महीनों में पूरी होने वाली यात्रा सप्ताहों में पूरी होने लगी। वाष्पचलित जलपोतों के विकास से जलयानों की गति तीव्रतर होती चली गई है। इसी प्रकार टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस केबल, राडार, शीतालय या फैक्ट्री युक्त जलयानों की सहायता से परिवहन में भारी उन्नति हुई है। स्थल तथा वायु परिवहन की तुलना में जल परिवहन अधिक सस्ता होता है। इसी कारण भारी मात्रा में आयात तथा निर्यात हेतु इसका ही प्रयोग होता है। इसके लिए न तो सड़कें, न रेल की पटरियां बिछानी पड़ती हैं, न ही कभी मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। केवल बंदरगाहों पर अग्रांत सुविधाएं ही विकसित करनी पड़ती हैं। हाँ, इस महासागरी परिवहन में समय अवश्य बहुत अधिक लगता है, इसलिए शीघ्र या नष्ट या सड़ने वाली सामग्रियां, दूध, मक्खन, मछली, फल, सब्जी आदि के लिए शीतालय युक्त शीघ्रगामी जलयानों की आवश्यकता पड़ती है, भले ही उसका किराया अधिक देना पड़े। परिवहन की सस्ती लागत हेतु लंबी दूरियां, बाधा रहित मौसम, रुक्ष न हो, जलयानों में कोई खराबी न हो आदि हो, जलयान विशाल आकार के हों जिससे अधिक माल भेजा जा सके, आने व जाने दोनों ओर से जलयान की पूरी क्षमता भर माल की उपलब्धि हो, तथा जलयान नवीन सुविधाओं, स्वचालित सिग्नलों, रेडियो संचार तथा राडार आदि से लैस हों। महासागरीय मार्ग। विश्व के 5 प्रमुख महासागरीय मार्गों, पहला उत्तरी अटलांटिक, दूसरा भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय, तीसरा केप ऑफ गुड होप, चौथा दक्षिणी अटलांटिक तथा पांचवा प्रशांत महासागरीय में 2 प्रमुख महासागरीय मार्ग भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय तथा केप ऑफ गुड होप मार्ग हिंद महासागरीय राज्यों से संबंधित हैं। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है, जो पश्चिमी यूरोप से भूमध्य सागर, स्वेज नहर, लाल सागर को पार करता हुआ हिंद महासागर में आ जाता है। मार्ग के प्रमुख पत्तन लेलिनग्राद, हैम्बर्ग, एम्स्टर्डम, रॉटरडम, लंदन, साउथहैम्प्टन, लिवरपूल, लिस्बन, मार्सेलीज, जेनेवा, रोम, नेपल्स, ओडेसा, पोर्ट सईद तथा अदन आदि हैं। हिंद महासागर में सबसे पहले इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक दक्षिणी व पूर्वी एशिया को तथा दूसरी दक्षिण मुड़कर पूर्वी अफ्रीका के पत्तनों मोम्बासा, जंजीबार, बीरा, लोरेंको मार्क्स तथा डर्बन आदि की सेवा करता है। दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी एशिया को जाने वाली शाखा में एक मध्य पूर्व को ओमान, बहरीन, बसरा, बुसायर को जाती है। दूसरी शाखा कराची, बम्बई, कोलंबो, मद्रास, कलकत्ता, रंगून, पेनांग होते हुए सिंगापुर तथा वहां से पूर्वी एशिया की सेवा करती है। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया के लिए अदन से कोलंबो होकर पर्थ तक तथा अदन से सीधे पर्थ की जलयान सेवा होती है। यह मार्ग संसार के सबसे बड़े स्थलीय भाग तथा सर्वाधिक जनसंख्या की सेवा और पाश्चात्य तथा पौर्वात्य सभ्यताओं को एक दूसरे से प्रभावित करने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। केप ऑफ गुड होप मार्ग उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा पश्चिमी यूरोपीय तट को, अफ्रीका के पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों तटों, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित करता है। केप ऑफ गुड होप से इसकी चार शाखाएं हो जाती हैं। एक अफ्रीका के पूर्वी तट के पत्तनों से होते हुए भूमध्य सागर को, दूसरा सीधे कोलंबो को, तीसरा जकार्ता को तथा चौथा पोर्ट एलिजाबेथ तथा डरबन होकर सीधे पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न तथा सिडनी को चला जाता है। स्वेज नहर खुलने के बाद से केप ऑफ गुड होप मार्ग का महत्व कम हो गया है, क्योंकि स्वेज मार्ग द्वारा लिवरपूल से बंबई तक 8000 किलोमीटर तथा लिवरपूल से सिडनी के बीच 2000 किलोमीटर की कम दूरी तय करनी पड़ती है, परंतु बीच बीच में मध्य पूर्व पर छा जाने वाले युद्धकालीन घटनाओं में जब यात्री तथा मालवाहक जलयान नष्ट कर दिए जाते हैं तो संबंधित देशों को इसी मार्ग की शरण में जाना पड़ता है। पोताश्रय एवं पत्तन। किसी देश के अतिरिक्त उत्पादन का दूसरे देश को निर्यात तथा देश की आवश्यकता हेतु आवश्यक सामग्रियों के आयात के लिए पोताश्रय हार्बर तथा पत्तन पोर्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ जलयान प्रश्रय पाते हैं, ईंधन लेते हैं, झंझावतों से सुरक्षित रहते हैं। अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जलयान विभिन्न सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। पुराने जलयानों की मरम्मत एवं नवीन जलयानों का निर्माण होता है। ये देश के बहिर्द्वार गेटवे का भी कार्य करते हैं। बनावट के अनुसार पोताश्रय दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक पोताश्रय, ये प्रायः खाड़ियों, ज्वार नदमुख, परिवेष्टित खाड़ियों, पश्चजल तथा तरंगरोध समुद्र तट के समांतर खाड़ियों के एक या दो निकले हुए भागों अथवा अनेक द्वीप जो तरंगरोध का कार्य करें तथा निर्मित द्वारा निर्मित होते हैं। प्राचीन काल के प्रायः सभी बंदरगाह इसी श्रेणी से हुआ करते थे। इस प्रकार के प्रमुख बंदरगाह कराची, बंबई, रंगून, सिंगापुर आदि हैं। कृत्रिम पोताश्रय, ये समुद्र तट पर तंग अवरोध प्रणाली द्वारा कृत्रिम खाड़ी, पाश्चजल या घाट का निर्माण कर बनाए जाते हैं। ये पूर्ण रूप से बनावटी होते हैं तथा बड़ी लागत से खुले समुद्र में बनाए जाते हैं। इनके अंतर्गत नए नए उपकरणों, यंत्रों व इंजीनियरिंग द्वारा अच्छे व तंग अवरोध बनाए जाते हैं, जैसे मद्रास में। इनके अतिरिक्त कुछ पत्तन ऐसे भी होते हैं जिनके कोई पोताश्रय नहीं होते और जहाज़ों पर माल की लदाई उतराई खुले तटों पर बाजारों व मालवाहक नावों के द्वारा होती है। पोताश्रय के उद्भव तथा विकास की आदर्श परिस्थितियाँ। बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संगम स्थल होता है। यह जल व थल के आर्थिक परिवहन के बीच संबंध स्थापित करता है, जहाँ स्वदेशी तथा विदेशी वस्तुओं का विनिमय होता है। इसकी अधिकता या कमी उस बंदरगाह की विशेषताओं पर निर्भर करती है। अतः एक सुरक्षित तथा अच्छे पोताश्रय में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, समुद्र तट की गहराई अधिक हो पर 30 मीटर से अधिक नहीं, जिससे बड़े बड़े जहाज समुद्र तट तक आ सके, अन्यथा जहाजों को दूर समुद्र में ही रुकना होगा तथा वहां से छोटे छोटे स्टीमरों द्वारा व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करना पड़ेगा। इससे व्यय बढ़ता है तथा अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। कम गहरे जल वाले पत्तनों पर तलछट, रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि का जमाव होता रहता है, जिससे तल मार्जन ड्रेजिंग द्वारा बराबर साफ करना पड़ता है, जिससे बड़े महासागरीय जलपोत आ सके। दूसरा, तट के पास समुद्र में फैला हुआ तरंगरोध हो, जिससे झंझावतों, चक्रवातों एवं आंधियों के कारण उत्पन्न लहरों की भीषणता से सुरक्षा हो सके। तरंगरोध की अनुपस्थिति में कंक्रीट की दीवारों का कृत्रिम तरंगरोध बनाया जाता है जिससे जलयान सुरक्षित रह सकें, जैसे मद्रास में। तीसरा, बंदरगाह के निमित्त काफ़ी लंबी चौड़ी खाड़ी की आवश्यकता होती है जिससे बड़े जलयान घूम सकें, कई जलयान एक साथ ठहर सकें तथा माल चढ़ाया तथा उतारा जा सके। चौथा, पोताश्रय द्वार चौड़ा सीधा तथा गहरा होना चाहिए जिससे जलयानों के आने जाने में रुकावट न हो। पांचवा, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार में 5 मीटर से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए जिससे ज्वार की प्रत्येक दशा में लदाई व उतराई हो सके। छठा, ज्वार नद मुख द्वारा बने बंदरगाहों पर ज्वार भाटा का काफ़ी तेज होना आवश्यक है जिसमें बड़े बड़े जलयान भीतर तक जा सकें और वापस आ सकें। साथ ही नदियों द्वारा जमा की गई बालू तथा मिट्टी की सफाई होते रहे, अन्यथा सदैव तलमार्जन करना पड़ेगा। सातवां, शीतकाल में पोताश्रम हिमरहित हो, नहीं तो हिमखंडकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त हिमखंड भी बहकर बंदरगाह के मार्ग को असुरक्षित करते रहते हैं। आठवां, कोहरा तथा धुंध भी जलयानों को पथभ्रष्ट करते हैं तथा इनका अभाव बंदरगाहों के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। नवां, किसी प्रमुख व्यापारिक जलमार्ग पर स्थित बंदरगाह का विकास तेजी से होता है, जैसे सिंगापुर। तरंगरोध, तरंगरोध महासागरीय झंझावतों फलस्वरूप उत्पन्न तेज लहरों के वेग को रोकने का कार्य करता है। यह एक बनावटी चट्टान का कार्य करता है जिसका उपयोग समुद्र की जल तरंगों, नदियों की तलहटी में जमा हो रहे रेत मिट्टी आदि तथा समुद्र तट पर जमा हो रहे रेत बालू के ढेर को रोकने के लिए किया जाता है। तरंगरोध का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए जिससे उसके द्वारा बड़े प्रलयकारी जल प्रवाहों को रोका जा सके, साथ ही साथ वहां सागर तल गहरा रहे तथा जल वायु एवं ज्वार भाटा द्वारा अधिकाधिक लाभ हो सके। इसके लिए वायु का अध्ययन अत्यावश्यक है क्योंकि वायु से समुद्र तट पर तेज या मध्यम गति वाली जल तरंगें पैदा हो जाती हैं। यही नहीं बल्कि जल तरंगों का अधिक विस्तृत या संकुचित होना इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की वायु की गति क्या है, वह कितना मार्ग तय करके आ रही है तथा उसकी प्रवाह दिशा किस ओर है। अधिक प्रभावशाली जल प्रवाह में तारतम्य होता है, निरंतरता होती है, लहरों की ऊंचाई समुद्र तट से दूरी पर निर्भर करती है। इन सब का अध्ययन करके तरंगरोध का निर्माण करना चाहिए। जलयान गोदी, गोदी वह स्थान है जहाँ पर जलयान आकर आश्रय पाते हैं, उनकी मरम्मत सफाई आदि का कार्य होता है, यहीं जहाजों का निर्माण भी होता है। यह दो प्रकार की होती हैं। पहला, शुष्क गोदी, यह अधिकतर जहाजों के निर्माण मरम्मत तथा अन्य प्रकार के निर्माण हेतु काम में लाई जाती हैं। इसे पुनः दो वर्गों में रखा जा सकता है। अ, स्थिर शुष्क गोदी बेसिन के आकार की होती है, पंप करके इसके अंदर से पानी बाहर निकाला जा सकता है या भरा जा सकता है। तथा बी ब, तिरंगी शुष्क गोदी में मरम्मत सफाई आदि के लिए जलयान को पूर्ण रूप से हवा में क्रेनों द्वारा उठा लिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर पंप द्वारा गोदी में पानी भरने अथवा निकालने का कार्य हो सकता है। दूसरा, सजल गोदी, यह समुद्र में तैरती रहती हैं तथा जलयानों के आगमन के साथ तुरंत काम प्रारंभ कर देती हैं जिससे जलयानों में माल उतारने तथा चढ़ाने का कार्य सुगम हो जाता है। यह खुली अथवा बंद दोनों प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ ज्वार भाटा में अधिक अंतर होता है, वहाँ इनका प्रयोग अधिक होता है। पत्तन एक ऐसा स्थान है जहाँ परिवहन के साधनों का परिवर्तन होता है। स्थल मार्गों द्वारा लाए गए माल को जलपोतों में लादा जाता है तथा जलपोतों द्वारा सागरीय मार्गों से लाए गए माल को स्थल के अतिरिक्त आंतरिक भागों में जाने वाली रेलगाड़ियों, ट्रकों आदि से लादा जाता है। साथ ही प्रत्येक पत्तन देश के अंदर उत्पादित पदार्थों को एकत्रित करके विदेश भेजता है तथा विदेश से आयातित माल को देश के अंदर वितरित करता है। अर्थात प्रत्येक पत्तन एकत्रीकरण केंद्र तथा वितरण केंद्र भी होता है तथा इसका प्रमुख कार्य आयात तथा निर्यात व्यापार का संचालन करना है। किसी पत्तन के विकास तथा समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पत्तन पृष्ठ प्रदेश के नगरों से रेल तथा सड़क मार्गों के द्वारा संबंधित हो, जिससे आयात तथा निर्यात की वस्तुओं को सुगमतापूर्वक बांटा व इकट्ठा किया जा सके। दूसरा, बंदरगाह की स्थिति की उपयुक्तता। जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, प्रत्येक बंदरगाह के विकास की कुछ आदर्श परिस्थितियां होती हैं। पत्तन की उन्नति के लिए उनकी आवश्यकता उपयुक्तता आवश्यक है। तीसरा, किसी पत्तन की समृद्धि के लिए अग्रांत सुविधाएं अत्यंत प्रभावी कारक हैं। चौथा, किसी पत्तन की समृद्धि का मुख्य आधार वहां का पृष्ठ प्रदेश होता है, क्योंकि आयात तथा निर्यात की मात्रा तथा व्यापार की सुविधाओं व उनके स्तर का निर्धारण पृष्ठ प्रदेश द्वारा ही होता है। कोई पत्तन जितने क्षेत्र से प्राप्त माल को विदेशों में भेजता तथा विदेशों से आयातित माल को जितने क्षेत्र में वितरित करता है, वह क्षेत्र उस प्रदेश का पृष्ठ प्रदेश होता है। शेष श्रेष्ठ पृष्ठ प्रदेश सघन जनसंख्या वाला हो, रेलों तथा पक्की सड़कों के जाल द्वारा पृष्ठ प्रदेश के नगरों से संबंधित हो तथा इसे विस्तृत तथा उत्पादक होना चाहिए। यहाँ की जनसंख्या संपन्न हो, जिससे उसकी कार्यक्षमता अधिक हो तथा आयात हेतु बड़ा बाजार मिल सके, निर्यात हेतु माल की विशाल मात्रा हो तथा उनमें विविधता होनी चाहिए। कोई पत्तन किस प्रकार का, किन किन सामग्रियों का, कितनी मात्रा में व्यापार करेगा, यह उसके पृष्ठ प्रदेश पर निर्भर है। जैसे पर्थ का पृष्ठ प्रदेश ऊन, गेहूँ, कोयला तथा मांस का बृहद उत्पादक है, अतः यहाँ के निर्यात में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी प्रकार आयात में उन वस्तुओं की प्रमुखता होती है जिनका उत्पादन नहीं होता, जैसे मशीनरी, यातायात के साधन, रसायन, कच्चा तेल, वस्त्र तथा खाद्यान्न। ईरान, इराक, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत आदि के पत्तनों के पृष्ठ प्रदेश मरुस्थली होने से अनुपजाऊ हैं, अतः यहाँ के आयात में खाद्यान्न, वस्त्र, मशीनरी, रसायन आदि प्रमुख होते हैं तथा निर्यात में यहाँ का एकमात्र प्रमुख उत्पादन खनिज तेल होता है। इस प्रकार पृष्ठ प्रदेश का विस्तृत क्षेत्रफल नहीं बल्कि उसकी उत्पादकता महत्वपूर्ण है। किसी पृष्ठ प्रदेश की उत्पादकता उसके प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों द्वारा नियंत्रित होती है। प्राकृतिक साधनों में स्थिति, भूमि की बनावट, जलवायु, जलापूर्ति, वनस्पति, मिट्टी, खनिज तथा जीव जंतु महत्वपूर्ण हैं। सिंगापुर का पृष्ठ प्रदेश बंबई तथा कलकत्ता की अपेक्षा छोटा है, परंतु सिंगापुर का व्यापार मूल्य, मात्रा, प्रतिवर्ष आने जाने वाले जलयानों की संख्या तथा धारिता की दृष्टि से कलकत्ता व बंबई से बहुत बड़ा है। मानवीय साधनों में जनसंख्या का आकार, उनका रहन सहन, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्रय शक्ति, विभिन्न वस्तुओं के प्रयोग में रुचियां तथा आयात करने की आवश्यकताएं, निर्यात हेतु उच्च कोटि का उत्पादन करने की कुशलता तथा तकनीकी विकास की अवस्था महत्वपूर्ण है। कुछ पृष्ठ प्रदेश निर्यात के लिए विभिन्न प्रकार का उत्पादन प्रस्तुत करते हैं, जैसे बंबई, कलकत्ता आदि, परंतु कुछ केवल एक ही वस्तु का निर्यात कर सकते हैं, जैसे फारस के खाड़ी तटीय पत्तन। विविध वस्तुओं का निर्यात करने वाले पृष्ठ प्रदेश उत्तम होते हैं। पृष्ठ प्रदेश की संपन्नता का आकलन सघन जनसंख्या व उत्पादकता से होता है। क्योंकि यह बाहर से आयातित सामग्री की शीघ्रता से खपत करता है तथा निर्यात हेतु विविध प्रकार के सामान तैयार करता है, जैसे कलकत्ता का पृष्ठ प्रदेश चाय, जूट, चावल, कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, रेल के इंजन, लोहा इस्पात आदि का निर्यात करता है तथा बाहर से आए चावल, पेट्रोलियम, कपास, मशीनों आदि का समीपस्थ बाजार में वितरण करता है। बंबई, मद्रास, रंगून, केपटाउन आदि के पृष्ठ प्रदेश संपन्न हैं। पतन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए जलाग्र की लंबाई नहीं बल्कि विकसित अग्रांत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। घाटों पर जलयानों को रोकने के बाद भारी भारी मालों को उतारने चढ़ाने के लिए क्रेनें, भारी सामान उठाने की डेरिकें, कन्वेयर बेल्ट, रेल के इंजनों तथा अन्य भारी भारी मशीनों के लिए विशाल लौह हाथों आदि अन्य यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। काफ़ी की बोरियों, रुई की गांठों, चीनी की बोरियों, सेब के बरेलों, केले के गुच्छों आदि को चढ़ाने उतारने के लिए विशेष प्रकार की मशीनों का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम के लिए टैंकरों तथा अनाज के लिए ट्रैम्प स्टीमरों की आवश्यकता होती है। अनाज, कोयला, लोहा आदि सावधानी से उतारने चढ़ाने पर खराब न होने वाले मालों को विशिष्ट साज सज्जा युक्त संपूर्ण नौभार मात्रा में जलयानों द्वारा भेजा जाता है। इसी प्रकार माल को सुरक्षित रखने के लिए शीतालयों, गोदामों,